हाँ, तो ये दसवीं बार जो महाभारत श्रवण करता है तो उसकी कैसे जो है ना उसको सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गंधर्व अप्सराओं से उस विमान की शोभा और बढ़ जाती है। उस पर बैठा हुआ पुण्यात्मा पुरुष अग्नि के समान तेजस्वी मुकुट से अलंकृत और सोने के आभूषणों से विभूषित होता है। उसका शरीर दिव्य चंदन से चर्चित होता है, दिव्य मालाओं से विभूषित होता है, दिव्य भोगों से संपन्न हो वह दिव्य लोकों में विचरता है और देवताओं की कृपा से उत्कृष्ट शोभा संपत्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार बहुत वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सम्मान पूर्वक रहता है। इसके बाद 21,000 वर्षों तक गंधर्वों के साथ इंद्र की नगरी में रहकर इंद्र के साथ ही वहां का सुख भोगता है। दिव्य रथों और विमानों पर आरूढ़ हो नाना प्रकार के लोकों में विचरता और दिव्य नारियों से घिरा हुआ देवता की भांति वहां निवास करता है। तो देखा, ये वेदों की इस प्रकार की भाषा है। एक नमूना में है बताया है? तो भगवान ही कह रहे हैं, श्रुति विप्रति पन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला, है ना। तो इस प्रकार के जो है ना, मतलब जितने भी कर्म हैं वेदों के, तो उनमें इस प्रकार का फल बतलाया गया है कि ये है ना। तो बुद्धि को विचलित नहीं करने देना है। वो कर्म जो है ना आप करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, फल भोगने के लिए नहीं, है ना। तो यही जो है ना बुद्धि योग, भगवान बताते हैं ये बुद्धि योग है। तदा योगम अवापससी, जब बुद्धि इस प्रकार से समाधि में अचल हो जाएगी है, तो फिर योग प्राप्त होगा, तब भगवान से आप संबंध जोड़ सकते हो, है ना। अगर इन भोगों में अगर आप विचलित हो गए तो फिर आप योग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब भगवान कहते हैं तदा योगम अवापससी, उस समय तुम योग प्राप्त करोगे। तो योग, योग के बारे में जो है अब हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में, नवा अध्याय है, श्लोक संख्या 23। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, योग का अर्थ है क्या, अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है। देखो, योग और समाधि दोनों यहां प्रभुपाद समझा रहे हैं। आज के श्लोक में योग और समाधि दोनों की बात है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं, योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है, या भगवान की सेवा में शत प्रतिशत अनुरक्ति। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है, फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवधा भक्ति में भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवधा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तुति, दास्य भाव, आज्ञा पालन, सख्य भाव या समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है, जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए भगवद गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं। भगवान ऐसे बिरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है। अब गीता में कहां पर भगवान ने बताया कि योगियों में सबसे श्रेष्ठ भगवान का भक्त है? 6 अध्याय का अंतिम श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है, और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक को भेज दिया जाता है जहां भौतिक जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में जीव को अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों को सहना होता है। कौन कौन से तीन प्रकार के कष्ट हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ऐसा जीव की स्वाभाविक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। भगवत भक्ति से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता, अपितु वे भक्ति के सत कार्य में लग जाती हैं। जो इच्छाएं हैं ये समाप्त नहीं होती हैं। समाधि का ये मतलब नहीं है। हाँ, तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि स्वाभाविक इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं? भक्ति के कार्य में लग जाती हैं उसकी इच्छाएं। इससे इच्छाएं वैकुंठ चली जाती हैं। सेनापति भीष्म देव यहाँ पर विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे भक्ति योग कहते हैं। और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को देख रहे थे। अतः उन्होंने अगले श्लोक में इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहें। अब अगले श्लोक में भीष्म देव कहते हैं क्या कि भगवान इस रूप में मेरी आंखों के सामने रहें। कैसा रूप? चतुर्भुज रूप और उगते हुए सूर्य की भांति अरुण नेत्रों से युक्त, सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुख कमल वाले मेरे प्रभु, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करो जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। तो ये जो है ना, कितना सौभाग्य है भीष्म देव का। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, वैष्णव सदा ही आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह शत प्रतिशत निश्चित था कि शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान का सुंदर मुखड़ा देखना चाहा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन भी ना कर पाए, है ना। विनम्र थे इसलिए। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता, यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर नहीं त्यागूं, इसका अर्थ है कि ये महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्याग करेगा, वो प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहे थे अपने शरीर को बनाए रख सकते थे। ये वरदान उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तो समाधि का मतलब क्या? भगवान का दर्शन करना, निरंतर दर्शन करना, ये समाधि है। तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। वे फिर वे कहीं भी जाएं, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहेगी। शुद्ध भक्त कभी भी भगवत धाम जाने का इच्छुक नहीं रहता, वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहें तो वह समान रूप से तुष्ट रहता है। मतलब वैकुंठ में जाएं या नरक में जाएं, दोनों स्थिति में वो समान है ना। शुद्ध भक्ति की तो एक ही इच्छा रहती है कि वो सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्म देव की इतनी इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह मर जाएं। शुद्ध भक्त की यही सर्वोच्च अभिलाषा होती है। तो इस तरह से हमने सुना योग और समाधि के बारे में। अब देखिए, योग एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। ये छठवां अध्याय है। छठवें अध्याय में देखिए कौन सा श्लोक है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। श्लोक संख्या 23 है जिसमें भगवान योग की परिभाषा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो उसको जानना चाहिए जिसमें दुख के संयोग का वियोग है और योग नाम से जाना जाता है। उस चीज को जानो जिसे योग कहते हैं। अब वो है क्या? दुख के संयोग का वियोग है। दुखों का संयोग नहीं होता जिसमें, बिल्कुल है कि नहीं? दुख के संयोग का वियोग है है, और योग कहा जाता है उसे जानना चाहिए, है ना। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये पेज नंबर 218 का अंतिम पंक्ति है। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की समाधियां, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथा कथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यहां तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है ना। तो प्रभुपाद जी योग के बारे में काफी बातें बताई हैं। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान योग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्मयोग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। तो यहाँ तक हमने चर्चा की है समाधि के बारे में, योग के बारे में, और वेदों का जो श्रुति फल है उसके बारे में। आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? तो इनका प्रश्न है कि जो हमने महाभारत श्रवण का जो फल जो पढ़ा है तो जो भक्त है वो क्या चाहेगा? भक्त जो है ना अगर कुछ करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, है ना। तो गीता में ये गीता जो है ना इसलिए सब शास्त्रों का निचोड़ है। जो बात जो है ना गीता में बताई गई है वो आपको वैसे नहीं मिल सकती कहीं भी, लेकिन निचोड़ है, है ना। क्योंकि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि विचलित ना हो इन चीज़ों में, क्योंकि ये बातें जो बताई गई हैं लोगों को किसी प्रकार से लगाने के लिए बताई गई हैं कि किसी प्रकार से लगे, है ना, इस कार्य में, आप समझे ना। लेकिन असली फल जो है ना ये नहीं है, है? वेदों का जो असली उद्देश्य है वो क्या है? कृष्ण प्राप्ति है। वेदस्य सर्वैरहमेव विद्यो, समस्त वेदों के द्वारा कृष्ण ही जानने योग्य हैं, है? लेकिन जो बातें बताई गई हैं ये तो जो है ना किसी प्रकार से जो है, जैसे कि बच्चा होता है ना तो बच्चे को कहते हैं कि बेटा ये दवाई खा तो तुझको टॉफी देंगे, तुझको टॉफी मिलेगी, है ना। तो दवाई खाने का फल ये थोड़ी है कि टॉफी मिले, लेकिन बच्चा नहीं समझता है कि उसको क्या बीमारी है और उस बीमारी से वो कितना कष्ट भोग रहा है, और उसकी बीमारी दूर हो जाएगी तो कितना बड़ा लाभ है, वो नहीं समझता है। तो जब वो सुनता है कि मुझे टॉफी मिलेगी खाने को तो फिर वो दवाई खाता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से वेदों ने जो है ना टॉफी की तरह ये बातें बताई हैं कि तुमको ये फल मिलेगा, तुमको वो फल मिलेगा, है ना। लेकिन जो बुद्धि है ना, जब विचलित ना हो तो फिर असली बुद्धि है ना। तो कोई जैसे बच्चा बुद्धिमान हो जाता है तो फिर वो समझ लेता है कि ये टॉफी जो है ना ये नहीं है इसका फल, कि दवाई खाने का लाभ ये नहीं है, मुझे टॉफी मिल रही है ना। दवाई खाने का लाभ तो कुछ दूसरा ही है। तो इसको कहते हैं बुद्धि, है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ। हाँ, इनका प्रश्न कि 10 बार तक हमने पढ़ के बताया कि 10 बार सुनने से ये फल होता है, तो और आगे आगे कितने बार बताया है? इसके बाद नहीं बताया, इसमें फिर बताया कि 10 बार सुनने के बाद ये सब फल मिलता है, उसके बाद फिर अलग अलग जो है ना लोकों में जाएगा वो, और फिर अंत में भगवान के धाम में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा, ठीक है ना। इनका प्रश्न अच्छा है, इनका प्रश्न है कि कितने बार पढ़ सकता है कोई व्यक्ति महाभारत को। ये तो निर्भर करता है कि भाई किसके पास कितना समय है। अब तो आयु बहुत थोड़ी है लोगों की, है ना, और फिर समय भी नहीं मिलता है ना। लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति अगर समय निकाले तो ऐसी बात नहीं है, पढ़ सकता है। अब गीता के 700 श्लोक हैं, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में पढ़ सकता है ना, तो अगर 10 घंटा रोज अगर पढ़े कोई व्यक्ति समय निकाल करके, तो 7000 श्लोक पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो 1 लाख श्लोक हैं, तो कितने दिन लगेंगे? तो 15 दिन में 1 लाख श्लोक पढ़ सकता है कोई व्यक्ति महाभारत के, है ना। अगर संस्कृत का ज्ञान है, संस्कृत भाषा का ज्ञान है, और संस्कृत के श्लोक का अभ्यास है पढ़ने का, तो 15 दिन में एक बार मतलब पूरा महाभारत पढ़ सकता है, 1 लाख श्लोक पूरे कर सकता है, ठीक है ना। और 10 बार अगर महाभारत पढ़ेगा तो 150 दिन लगेंगे, 150 दिन मतलब 5 महीना, तो 5 महीने में वो 10 बार महाभारत पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये निर्भर करता है, लेकिन कलयुग में सामान्य व्यक्ति तो अब ये नहीं कर सकता, उसे ना तो संस्कृत भाषा का ज्ञान है ना, अभ्यास नहीं है। 1 श्लोक को समझने में ही कितने दिन लग जाते हैं, कितना समय लग, कितने घंटे लग जाते हैं, है कि नहीं, तो वो दूसरी बात है। और कोई प्रश्न है? इनका प्रश्न है कि अगर रोज नियम बनाए गीता के 5 श्लोक पढ़ने का, और उनका अर्थ समझें, अध्ययन करें, है ना। हाँ, नित्यम भागवत सेव्या ये बताया गया है, नष्ट प्राय स्वभदेश नित्यम भागवत सेव्या। तो ये गीता भी भागवत है, क्योंकि भगवान का संदेश है, तो गीता को ही भागवत कहा जा सकता है। तो नित्यम गीता सेव्या, नष्ट प्राय स्वभद्रेश, तो अभद्र नष्ट होंगे, अनर्थ निवृत्ति होगी, है ना, शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होगी। लेकिन आपको पढ़ना क्या है? भगवद्गीता यथारूप, भगवद्गीता यथारूप जो ना, जिसमें कि संदेश बदलाना गया हो। लेकिन अगर आप और दूसरी टीकाएं पढ़ते हैं जिसमें कि अपनी बातें जोड़ दी गई हैं, तो फिर वो जो आपको वैसा लाभ नहीं प्राप्त होगा, है ना। जो भगवद्गीता यथारूप है, अगर आप ये पढ़ेंगे तो गीता का जो ना असली आपको संदेश मालूम होगा। और कोई प्रश्न किसी का? देखिए, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं समाधि में अचल बुद्धि, तो फिर अर्जुन को जो ना बड़ा आश्चर्य हुआ कि समाधि का तो मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जंगल में बैठे बिल्कुल निश्चल, हिले डुले नहीं, है ना, ना कुछ चिंतन करे, ना कुछ देखे, ना कुछ सुने, है ना। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं समाधि की भी बात कर रहे हैं और फिर युद्ध करने का भी आदेश दे रहे हैं। तो फिर अर्जुन ने पूछा आगे, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि से, कि उसकी फिर भाषा कैसी होती, कैसी बात वो बोलता है समाधि में स्थित है। अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा, स्वाभाविक है, क्योंकि समाधि का मतलब अगर बिल्कुल आप अचल हो जाएं, निश्चल हो जाएं, है ना, निश्चला अचला, तो फिर कैसे आप कार्य करेंगे, है ना। लेकिन ये भक्तियों की समाधि जो है ऐसी है जिसमें बुद्धि निश्चला और अचला होती है, इन शरीर चलायमान होता है ना, शरीर से बहुत कार्य होता है, लेकिन बुद्धि होती है निश्चला अचला, है कि नहीं। तो भगवान ने निश्चला अचला ये शब्द प्रयोग किए हैं बुद्धि के लिए। जो भक्त का शरीर है वो तो बहुत कार्य करता है ना। प्रभुपाद जी ने जो है 12 साल में 14 बार संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया और 108 मंदिर बनवा दिए हैं और 80 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं और हजारों हजारों शिष्यों को जो है सब कुछ सिखलाया, सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, भगवान को भोग लगाना, करताल बजाना, मृदंग बजाना, कीर्तन करना, प्रचार करना और प्रवचन देना, मतलब क्या क्या नहीं सिखाया 12 साल में, है ना, और समाधि में स्थित भगवान जो है ना, मतलब उनको नचा रहे हैं कठपुतली की तरह, वो नाच रहे हैं और भगवान की शक्ति से जो है ना इतना कार्य हो रहा है ना, तो उनकी बुद्धि जो है ना समाधि में अचल है ना। तो ये जो है ना प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो है ना भगवान के प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करता है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं हमें तो सीधे अब कृष्ण से ही आदेश प्राप्त करना है, जो प्रभुपाद जैसे जो भक्त हैं उनसे भी अगर हम संदेश प्राप्त करते हैं है? तो वो भगवान के संदेश, भगवान के द्वारा संदेश प्राप्त करने के ही समान है, कोई अंतर नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद जैसे जो गुरु हैं तो भगवान के जो है पारदर्शी माध्यम होते हैं, है ना, जिनके माध्यम से आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने हमें कुछ नियम बताए हैं, हम उन नियमों का पालन करें है? तो उस उन नियमों के द्वारा हम भगवान से योग प्राप्त कर सकते हैं। योग का मतलब संबंध, संबंध जोड़ना है ना, तो भगवान से आप संबंध जोड़ सकते हैं। तो समाधि और योग है? ये सब जो शब्द हैं भगवान गीता में प्रयोग करते हैं है? और व्यवहारिक ढंग से प्रयोग करते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं भाई कोई योगी है या कोई समाधि में अगर लगा हुआ है तो फिर तो वो जो ना समाज की नजरों से बिल्कुल दूर रहता है, एकांत में रहता है, है ना, उसी को ही योगी कहते हैं, बहुत बड़ा योगी वो है कि नहीं। लेकिन भगवान दूसरी बात बताते हैं, भगवद गीता में जो योग और समाधि की बातें करते हैं वो कुछ अलग ही हैं। योग के बारे में भगवान ने और भी कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्, श्लोक संख्या 50 में भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम्, योग कर्मों में कुशलता है। क्यों? क्योंकि इससे वो व्यक्ति जो है जहाति उभे सुकृते दुष्कृते, इस संसार में पाप और पुण्य दोनों को वो त्याग देता है। बुद्धि योग तो जहाति है उभे सुकृते दुष्कृते, इस भौतिक संसार में जितने भी पाप और पुण्य है उन दोनों को छोड़ देता है बुद्धि योग तो। तस्मात योगाय योगः कर्मसु कौशलम्, इसलिए योग कर्मों में कुशलता है कि आप कर्म भी करें और ना तो पाप और ना पुण्य कुछ नहीं होगा उन कर्मों से, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कुछ भी कर्म करते हो तो या तो पाप होता है या पुण्य होता है और उसमें बंधना पड़ता है। कर्मानुबंधी ने मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में कर्म बंधन है। मनुष्य के जीवन में आप जो कुछ भी कर्म करते हैं या तो उससे पाप का बंधन या पुण्य का बंधन होगा या मिश्रित होगा। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणः फलम्, तीन प्रकार से कर्म का फल होता है, अनिष्ट फल या इष्ट फल या मिश्र है। तो हमेशा जो ना कर्म का बंधन है, लेकिन योग कर्म सुख असलम, जो बुद्धि योग है, जो भगवान की भक्ति है, ये कर्म में कुशलता है कि आप कर्म भी करो और उसके फल से भी ना बंधो, उसके कर्म बंधन से भी आप नहीं बंधेंगे, है ना। तो ये जो रहस्य है ये भगवद गीता का है ना। और कोई प्रश्न किसी का? उनका प्रश्न है कि जाप के समय मन बहुत इधर उधर जाता है और बहुत सी बातें सोचता है तो क्या करना चाहिए? हाँ, जाप ही करना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अगर जाप मन इधर उधर जाता है तो और जाप करो, और जाप करो, और जाप करो, है ना, छोड़ना नहीं, 24 घंटे है ना जाप करो, और कोई उपाय नहीं है, है ना, अभ्यास करो। अभ्यास इन तो कौन थे? वैराग्य गृह थे। अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है, है ना। भोजन को शुद्ध करना है, भोजन जो है भगवान ने बताया रजोगुणी तमोगुणी और सत्वगुणी भोजन, यथासंभव व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए, है ना, प्रातःकाल उठने का अभ्यास करना चाहिए। तो एकदम से तो कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन हाँ अवश्य होगा, अवश्य मन जो है बस में आएगा। जैसे कि कोई कन्या जैसे विवाहिता होती है तो तुरंत ही तो उसको बच्चा नहीं मिल जाता है, है ना, उसको जो ना अपने पति की सेवा करनी होती है और पति के आदेशों का पालन करना होता है, तो फिर उसको जो है पुत्र जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही उसको पुत्र पैदा हो जाए। तो इसी प्रकार से भक्ति में मन स्थिर होगा, आप विधि का पालन कर रहे हैं तो एक दिन होगा, अवश्य होगा। और कोई प्रश्न? हाँ, श्लोक संख्या 49 में भगवान ने कहा है, दूरेण हैब्रह्म कर्म बुद्धि होगा धनंजय बुद्धो शरण मन मिच्छे कृपणा हा फल हेतवा। जो फल के हेतु से कर्म करते हैं वो क्या है? कृपण है। कृपण का मतलब कंजूस। कंजूस व्यक्ति जो है ना बहुत सस्ती सस्ती चीजों के चक्कर में रहता है, है ना। तो कर्म का जो फल है उसके लिए जो कोई व्यक्ति कर्म करता है कर्म फल भोगने के लिए, तो वो कृपण है, कंजूस है, है ना। बुद्धो शरण मन मिच्छे, है ना, तो बुद्धियों के शरण में आओ। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा फल क्या है मनुष्य के जीवन का? कृष्ण की प्राप्ति। तो कृष्ण की प्राप्ति को छोड़कर के कोई व्यक्ति जो है अगर ऐसे कूड़ा करकट बटोरता है तो उसको क्या कहेंगे? कृपण, है ना। कृपण जो है तो वो सड़क में पड़े कागज बटोरता है, कूड़ा करकट बटोरता है, तो वो कृपण है, है कि नहीं। उसको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है लेकिन उसका लाभ नहीं उठा रहा है। उससे सबसे कीमती चीज प्राप्त हो सकती है और वो क्या है? कृष्ण, है कि नहीं। कृपण उसका जो ना उपयोग नहीं करता, सदुपयोग नहीं करता है पैसे का, और कागज बटोरता है, कूड़ा जो फेंका हुआ कूड़ा है वो बटोरता है, है कि नहीं। तो कृपणा हाँ फल हेतवा। वेदों का जो है उद्देश्य भगवान की प्राप्ति कराना है, है ना। लेकिन वेदों में वो बात प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही गई है, वेदों में ये बात गुप्त है, लेकिन परोक्ष जो है ना परोक्ष रूप से वेदों का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति कराना है। हाँ, आपका प्रश्न, इनका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जो है ना मंदिर आ रहा है मंगल आरती के लिए और रास्ते में देखता है कि गरीब का बच्चा है कागज बटोर रहा है सड़क में, तो उसको कैसे लगाया जाए, भक्ति में कैसे लगाया जाए। देखिए, भगवान हृदय में बैठे हुए हैं सबके और अवसर देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अवसर का लाभ नहीं उठाता है तो फिर उसको अवसर नहीं मिलता, है ना। तो किसी व्यक्ति को जो ना ऐसे घर में ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहाँ भक्ति का वातावरण पहले से है, तो ये सब क्यों? क्योंकि भगवान ने जो है ना उसके पिछले जन्म के प्रयास को देखा, इसने प्रयास किया तो उसको उतना अवसर देते हैं, है ना। तो भगवान जो अवसर देते हैं आपको भक्ति का, और आप जो है ना अगर उस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो फिर अवसर नहीं मिलता। अगर आप अवसर का लाभ उठाते हैं तो भगवान और अवसर देते हैं, और सुविधा देते हैं, है ना, फिर वैसी संगति देते हैं भगवान, है ना। तो फिर तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जब भक्तों की संगति नहीं मिल रही है, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, है ना। सबसे बड़ा सौभाग्य भक्तों की संगति मिलना, है ना। साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कोए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। तो साधु संग, तो ये जो है भगवान की कृपा है। आपको मिला है अगर साधु संग, है ना, तो आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप लग गए इस रास्ते में। तो ये चीज जो है भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा प्रत्येक जीव पर है, लेकिन जीव जब उस कृपा का लाभ नहीं उठाता है तो फिर वो कृपा जो है उसको बहुत जन्मों तक नहीं मिलती है ना। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि बहुत से प्रभु प्रवचन देते हैं तो किसको गुरु स्वीकार करना। बहुत से गुरु होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई एक को गुरु स्वीकार कर लो और बाकी सब बेकार हैं, ऐसा नहीं है। देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जनम, शरीर की तपस्या में भगवान बताते हैं देवता गुरु, देवता ब्राह्मण गुरु और विद्वान, इनका सम्मान करना है ना। तो और गुरुजन मतलब कई बार गुरुओं का प्रयोग होता है कि गुरुजन, गुरुजनों का आदर करना है ना। तो गुरु शब्द बहुत व्यापक है, इसका बहुत व्यापक अर्थ है गुरु शब्द का है। तो गुरु का मतलब सीनियर भी होता है, कोई भी व्यक्ति जो ना अपने से बड़ा है तो उसको गुरु कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सम्मान करना चाहिए। फिर दीक्षा गुरु अलग होते हैं है ना, लेकिन जो शिक्षा गुरु हैं तो आपको बहुत से हो सकते हैं शिक्षा गुरु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम के जगत गुरु शिला प्रभुपाद के श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा के।